की जय। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। जय श्री श्री गौर निताई की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। सब वेद भक्त वृंद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जया मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। प्रातःकालीन इस भगवत सत्र में उपस्थित हुए सभी भक्तों का अभिवादन है। यह प्रभुपाद महाराज की इस जीव जगत पर असीम करुणा है, कृपा है। साक्षात श्री कृष्ण के चरणारविंद में सभी जीवों के हृदय में संतृप्त कृष्ण प्रेम है, उसको जागृत करने हेतु साक्षात यह ग्रंथ श्रीमद् भागवतम अपने आप में पूर्ण है। यह ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो कृष्ण प्रेम को जागृत करने वाला है, कृष्ण के चरणारविंद में प्रीति कराने वाला है। ऐसे ग्रंथ का प्रतिदिन श्रवण करने की सुविधा हमें प्रभुपाद महाराज ने जो प्रदान की है, वास्तव में हम प्रभुपाद महाराज के ऋणी हैं। प्रभुपाद महाराज के ही चरणारविंद में बैठकर यहाँ नित्य प्रतिदिन भागवत पाठ होता है। उसी क्रमानुसार आज स्कंद 7 अध्याय 10 और श्लोक संख्या है 50। यश साक्षात् भव पद्मज आदिभि रूपं धिया वस्तुतया उपवर्णितं मौने भक्त्या उपशमेन पूजिता प्रसादितां एषा सा सात्वताम पति न यश साक्षाद भव पद्मजादि भी रूपं दिया वस्तुतयोपवर्णितम् मौनेन भक्त्यो उपशमेन पूजिता प्रसीदतामेश सात्वतां पति नायश साक्षाद भव पद्मजादि भी रूपं दिया वस्तुतयो उपवर्णितम् मौनेन भक्त्यो उपशमेन पूजिता प्रसीदतामेश सात्वतां पति न यश साक्षाद भव पद्मजादि भी रूपं दिया वस्तुतयो उपवर्णितम् मौनेन भक्त्या उपशमेन पूजिता प्रसीदतामेश सात्वतां पति रूपं दिया वस्तुतयो उपवर्णितम् मौनेन भक्त्यो पूजितम् न यश साक्षाद भव पद्मजादि भी रूपं दिया वस्तुतयो उपवर्णितम् सुसाक्षाद भावपाद मजादि भी रूपम धियास्तुतयो पवर्णितम् मौनेन भक्त्यो पशुमेन पूजिता प्रसीदता में माता जी साक्षाद सात्वताम पति न यश साक्षाद अनादिवी समेन पूजित एक श्लोक में आए हुए शब्दों के अर्थ इस प्रकार है ना नहीं यश जिनका साक्षात प्रत्यक्ष भाव शिवजी पद्मज ब्रह्मा जी जिनका उत्पत्ति कमल से हुआ आदि भी उनके साथ अन्यों के द्वारा भी रूपम रूप दिया ध्यान के द्वारा भी वस्तुतया मूल रूप से उपवर्णितम वर्णित या अद्भुत वर्णित या अनुभूत मौने समाधि या गहन ध्यान द्वारा भक्त्या भक्ति द्वारा उपशमेन त्याग द्वारा पूजिता पूजित प्रसीदताम प्रसन्न हो एषा स यह सह वह सात्वताम महान भक्तों का पति स्वामी। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की। शिव तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष भगवान कृष्ण के सत्य का सही सही वर्णन नहीं कर पाए। वे भगवान हम पर प्रसन्न हो जो समस्त भक्तों के रक्षक रूप में उन महान संतों द्वारा पूजे जाते हैं, जो मौन ध्यान भक्ति तथा त्याग का व्रत लिए रहते हैं। यद्यपि भिन्न भिन्न लोग परम सत्य की खोज विभिन्न विधियों से करते हैं तो भी वे अचिंत्य बने रहते हैं, किंतु पांडवों गोपियों गोपों माता यशोदा नंद महाराज तथा वृंदावन के वासियों को भगवत प्राप्ति की परंपरागत विधियों का अभ्यास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे इन सबों के साथ सुख दुख में रहते हैं। इसलिए नारद जैसा साधु पुरुष आध्यात्मिक वादियों एवं शुद्ध भक्तों में अंतर को जानते हुए भगवान से यही प्रार्थना करता है कि वे उस पर प्रसन्न हो। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवै नमः श्रीचैतन्यमनोऽमीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रव्यं रूपं कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तु ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतात् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय कोटनीता न यस्य साक्षात् भव पद्मज आदि भी रूपम धिया वस्तु पयो उपवर्णितम मौनेन भक्त्या उपशमेन पूजित प्रसादिता महेश ससात्वता। तो यहाँ पर हम सब प्रसंग श्रवण कर रहे हैं प्रह्लाद महाराज का। महाराज परीक्षित के मन में जब भगवत चरित्र को लेकर एक शंका उत्पन्न हो गई और उन्होंने महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया कि भगवान जो सम हैं लेकिन उनकी लीलाओं में देखा जाता है लगता है कि वे विषम हैं। वे देवताओं का पक्ष लेते हैं और असुरों का वध करते हैं जबकि उनको असुरों से कोई भय नहीं है और देवताओं से कोई स्वार्थ नहीं है, फिर वे ऐसा क्यों करते हैं? इस प्रकार की जिज्ञासा जब महाराज परीक्षित ने प्रकट की तब सुखदेव गोस्वामी ने उसका उत्तर देने के लिए, शंका का समाधान करने के लिए उस तत्व दर्शन भी दिया, लेकिन अंततः उन्होंने एक इतिहास प्रस्तुत किया। इतिहास, इतिहास, इति मतलब यह, हास मतलब जो पहले घट चुका है, पहले यह हो चुका है, उसको इतिहास कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि महाराज परीक्षित को कई इतिहास प्रस्तुत किए गए सुखदेव गोस्वामी द्वारा। कई बार वे इतिहास प्रस्तुत करते हैं सत्य को बताने के लिए। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है समाज के लिए, लोगों के लिए, कि अगर आपको कोई सत्य जानना है, सत्य के बारे में जानना है, तो वास्तव में इतिहास को देखना चाहिए। जब तक हम इतिहास पर नजर नहीं करते हैं या पूर्व घटित घटनाओं पर, तब तक व्यक्ति सत्य को ठीक से नहीं जान सकता। आजकल देखा जाता है कि न तो लोग इतिहास को जानना चाहते हैं और न ही ऐसे तथाकथित लोग इतिहास को प्रस्तुत करते हैं। जैसे कहा जाता है प्रवचन, प्रवचन का एक अर्थ होता है परवचन। शास्त्र, साधु और गुरु के जो पूर्व काल में वचन जो उन्होंने कहे हैं, उसी वचन को दोहराना, उसको प्रवचन कहते हैं, स्ववचन नहीं। लेकिन आज एक फैशन है, आप जाएंगे कहीं भी कथा श्रवण करने तो बात कहेंगे पूर्व इतिहास की, जय राम की कथा कहेंगे या कृष्ण की कथा कहेंगे, लेकिन अंत में उपसहार के समय वो स्ववचन द्वारा सबको लिपापोती कर देते हैं। ऐसा देखा है। तो प्रवचन पूर्व के इतिहास को प्रस्तुत करना चाहिए सत्य जानने के लिए, और पूर्व इतिहास न जानने के कारण, प्रस्तुत न करने के कारण आज इतना समाज में, विशेषकर भगवान के विषय में और भजन के विषय में, कौन भजनीय है, कौन भगवान है, इसके विषय में बहुत बड़ा आडंबर है, क्योंकि लोग इतिहास को नहीं जानते, इतिहास प्रस्तुत नहीं किया जाता। जैसे प्रभुपाद जी इसी अध्याय के 2-3 श्लोक पहले तात्पर्य में बहुत सुंदर इतिहास का उदाहरण देते हैं, कि जैसे ये इतिहास जो प्रस्तुत किया गया, इसमें स्पष्ट समाज को शिक्षा मिलती है कि प्रहलाद महाराज ने विष्णु के सिवा हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली समर्थ व्यक्ति होने के बाद भी उसको भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया। हालांकि आप देखें तो हिरण्यकश्यप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप देखेंगे उनकी तीनों लोकों को अपने अधीन किया, देवताओं द्वारा जो पूजित होता, देवता भी उसकी स्तुति करते थे, सारे लोकपाल उसके अधीन थे, और यहां तक कि उसने प्रकृति के नियम को भी उलट फेर कर दिया था। इतना समर्थ व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति, और घोषणा कर दिया कि विष्णु मर गया है, अब मैं ही भगवान, विष्णु तो है ही नहीं। विष्णु को मारने के लिए चले थे और वैकुंठ तक पहुंचा तो देखा कि विष्णु नहीं है। अब विष्णु मर गया या वहां चला गया जहां से कोई आता नहीं, तो अब मैं ही एकमात्र भगवान। और उसके सिद्धियां भी देखें तो कितना समर्थ था। उसके बावजूद और प्रहलाद महाराज और उनके बीच में यही झगड़ा, बहुत कुपित होने का कारण मूल यही था कि जब सब तीनों लोक मेरे अधीन है, देवता तक मेरी स्तुति करते हैं, और ये मेरा पुत्र प्रहलाद मेरी अवहेलना करता है, मेरे यश में बट्टा लगा रहा है, ये मुझको भगवान स्वीकार नहीं करता है। लेकिन इतना समर्थ व्यक्ति होने के बाद भी प्रहलाद महाराज ने एक ही हिरण्यकश्यप को बताया, तुम कितने भी समर्थ हो, तुम्हारा कितना भी बड़ा बल है, वो बल भी भगवान विष्णु के द्वारा आता है, और भगवान विष्णु ही एकमात्र ईश्वर हैं, कृष्ण ही एक ईश्वर हैं। प्रभुपाद जी ये बात तात्पर्य में लिखा, इतना प्रताड़ना देने के बाद भी प्रहलाद महाराज तस से मस नहीं हुए। ये एक इतिहास है, इस इतिहास को समाज में प्रहलाद महाराज की कथा भी प्रस्तुत करते हैं तो लोग, तथाकथित लोग ये बात नहीं कहते जैसा प्रभुपाद महाराज कह रहे हैं कि एकमात्र विष्णु ही भगवान है। आप इस समय किसी भी व्यक्ति को कितना भी शक्ति के साथ देख लो लेकिन वो भगवान नहीं हो सकता, उसमें कितना भी सामर्थ्य है, और सामर्थ्य अगर है भी तो उसके भी स्रोत भगवान है। जैसे हनुमान जी जब सीता जी की खोज करने के लिए गए लंका में, तो उन्होंने उस वाटिका को बहुत उजड़ कर दिया, बहुत तूफान मचाया, रावण के एक पुत्र का भी वध कर दिया, अंततः हनुमान जी को लेकर रावण के सामने प्रस्तुत किया गया। तो रावण आश्चर्यचकित हो गया और पूछने लगा हनुमान जी से कि अरे वानर, तुम इतना मेरे राज्य में उत्पात करते हो, तुम जानते नहीं हो तीनों लोकों में मेरा डंका बजता है, तुम कौन हो जो इतना उत्पात मचा रहे हो? तो हनुमान जी उत्तर देते हैं कि हे रावण, जिनकी अंश मात्र शक्ति से तुम तीनों लोकों में डंका बजा रहे हो, उन सीतापति राम का मैं दास हूं। तो डंका भी बजता है तो भगवान, जब प्रहलाद महाराज ने भी यही बात कहा जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि तुम इतने निर्भय बने हुए ये कहां से तुमको ये बल मिल रहा है, देवता तक मेरी भ्रकुटी टेढ़ी होने से तीनों लोग कांपते हैं और तुम बिल्कुल निर्भय बने, ये बल तुम, प्रहलाद महाराज ने भी यही उत्तर दिया कि पिताजी जहां से तुमको बल मिलता है वहीं से मुझे भी मिलता है, बल के स्रोत, सारे शक्ति के स्रोत भगवान विष्णु हैं। लेकिन आज ऐसे इतिहास प्रस्तुत न करने के कारण बहुत आडम है, और फिलहाल इन दिनों में ये समाचार जगत में मीडिया में इतना साधुओं का टांग का खींचातानी हो रहा है कि लोगों का अब साधुओं पर जैसे विश्वास उठ जाएगा। इस पाखंड के कारण, लेकिन लोग भी इतिहास नहीं जानते। लोगों में क्या है, सबसे बड़ा अज्ञानता क्या है कि भगवान को वो साधारण व्यक्ति समझते हैं, और इससे बड़ा अज्ञानता क्या है कि साधारण व्यक्ति को भगवान समझ लेते हैं। ये दो बहुत बड़ा मूढ़ता है इस जगत में, और जब कोई व्यक्ति ऐसे श्रोता लोग उनको भगवान मानने लगते हैं तो प्रमाण देते हैं कि ओ 100,000 लोग आए हैं इनके प्रवचन में आते हैं, और इतना तो बड़ा आश्रम है, वो कितना वैभव है, तो समझ बस ये भगवान, ये जबकि हिरण्यकश्यपु का वैभव कितना था, 100,000 लोग क्या तीनों लोक अधीन है, लेकिन फिर भी उसको भगवान स्वीकार नहीं किया जा सकता। भगवान जो है वो प्रभुपाद जी इस विषय में बहुत स्ट्रिक्ट थे। प्रभुपाद जी जब विदेश में प्रचार करते थे तो प्रभुपाद जी की अगर हम लीलाओं को देखेंगे तो किसी भी व्यक्ति के मन में ये संदेह हो जाता है कि ये क्या कोई व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति कैसे इतना, 1,000 व्यक्ति भी मिलकर जो काम नहीं कर सकते हैं वो इतनी वृद्ध अवस्था में और 10-12 साल में इतना काम कर दिया, और इस प्रकार से हम भी अगर विचार करने लगे तो हमको भी ऐसा भ्रम हो जाता है कि नहीं नहीं, वैदेशों में कोई भक्त नहीं था, कोई पुजारी उनके पास नहीं थे, मंदिर का कोई ऐसे भक्त नहीं, और किस प्रकार एक मंदिर बनाया दूसरा बनाया, वहां भी व्यवस्था चल रहा है, वहां भी पूजा चल रहा है, वहां भी ठीक से प्रचार, ऐसा कैसे हो गया जबकि उनके साथ में उनके सिवा कोई था ही नहीं, और इतना कार्य, इतनी वृद्ध अवस्था में इतना शास्त्रों का ट्रांसलेशन करना, इतने मंदिर को मेंटेन करना, गौशाला गुरुकुल, और इतने इतना प्रचार करना, और इतने इतने, ये भारत जैसे वहां पर प्रश्न नहीं होते हैं, बड़े सिद्धांतिक प्रश्न और बहुत जटिल प्रश्न पूछते हैं वो लोग, भारत में तो इतना कोई लोग सिद्धांतिक प्राय प्रश्न नहीं पूछता है। अभी इसके पहले मैंने क्लास दिया तो कोई एक व्यक्ति मेरे को प्रश्न पूछा, रावण लंका के पहले कहां रहता था, क्या मतलब है इस प्रश्न का, क्या जाने, इसको जानकर क्या फायदा होगा, ऐसा भारत में कौन बड़ा है कौन छोटा, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। लेकिन वहां पर ऐसा प्रश्न, वहां बहुत सिद्धांतिक प्रश्न पूछते हैं बहुत, और जब उन प्रश्नों का समाधान हो जाता है तो वो एक्सेप्ट कर भी लेते हैं। भारत में आप उनका समाधान कर दो, प्रमाण भी दे दो, लेकिन जो पकड़ा है उसको पकड़े। सार्वभौम प्रभु एक बार लेक्चर दे रहे थे तो उसमें बता रहे थे एक बात कि भगवान कृष्ण का प्रेम सबके हृदय में है, लेकिन जैसे ये हेडपंप में वैक्यूम हवा आ जाता है तो बाहर से पानी डालना पड़ता है, ऐसे अगर हम बाहर से भगवान की कथा कीर्तन श्रवण करेंगे तो वो प्रेम प्रकट हो जाता है। जैसे हेडपंप में पानी नहीं आता, बीच में वैक्यूम आ जाता, हवा आ जाता है तो बाहर से जल डालते हैं तो अंदर से वो जल बाहर आने लगता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन जिसका वाइसर ही खराब कर दिया गया है उस पंप को उसमें बहुत मजकमारी करना पड़ता है। वाइसर ही खराब हो गया जिसका, वाइसर मतलब जो कुछ गलत पकड़ के बैठ गया है और उसको बस, तो उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है, उसको आप पानी डालकर भी वापस प्रकट नहीं कर सकते, वाइसर खराब हो गया है। तो कहने का अर्थ है, बता रहा था कि किसी भी सत्य को जानने के लिए इतिहास को जानना चाहिए कि कौन भजनीय है कौन भगवान है। इस तो इसी इतिहास को सुखदेव गोस्वामी ने प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करते हुए नारद जी के बात को यहां पर सुखदेव गोस्वामी नारद जी के वचनों को दोहरा रहे हैं, महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। और इस पूरे इतिहास का, पूरे आख्यान का उपाख्यान उपसहार करते हुए ये कुछ श्लोक हैं यहाँ पर। तो कहते न यश्य साक्षात भव पद्मज आदि भी, न यश्य, यश्य मतलब इसके पहले दो तीन श्लोक में नारद जी ने भगवान का वर्णन किया था युधिष्ठिर महाराज से विशेषकर कि वे भगवान, जैसे महाराज युधिष्ठिर प्रहलाद महाराज के विषय में सुने कि प्रहलाद महाराज कितने महान भक्त थे, साक्षात भगवान की गोद में उनको बैठने को मिला, भगवान ने किस प्रकार रक्षा किया, तो इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर को भी सांत्वना देने के लिए उन्होंने कहा कि वे ही कृष्ण, आप भी कोई कम नहीं, वे ही कृष्ण आपके भी घर में आया जाया करते थे, और कृष्ण जिन्होंने आपके सेवक रूप में उन्होंने कार्य किया, और कहीं कहीं वे आपके गुरु भी बने, जैसे अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गुरु बनकर, और सेवाएं की बहुत, शांति दूत बनकर गए, सारथी बने। तो इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर का भी उत्साह बढ़ाया, परीक्षित महाराज का भी यह सुनकर बहुत उत्साह बढ़ा। तो वे ही भगवान, अब कहते न यश्य वे ही भगवान, अर्थात ये महाराज युधिष्ठिर आपने जो प्रश्न किया था भगवान के विषय में उनका मैंने थोड़ा सा वर्णन किया, थोड़ा थोड़ा आपको जो बताया, क्योंकि पूरा पूरा तो उनका विषय में कोई नहीं बता सकता, मैंने थोड़ा सा बताया, पूरा पूरा उनको बताने में कोई समर्थ नहीं। क्यों पूरा पूरा उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता? तो किसी का वर्णन करना है तो उसको पहले समझना पड़ता है, अगर कोई पूरा पूरा समझ ही नहीं पाएगा तो वर्णन कैसे करेगा? भगवान को पूरा पूरा कोई समझ ही नहीं पाता है तो कैसे वर्णन करेगा? इसलिए न यश्य उनको, उनका पूरा पूरा वर्णन करना संभव नहीं। मैंने थोड़ा बहुत बताया, मैं क्या, भव, भव भगवान शिव जी को कहते हैं, जैसे उनकी पत्नी का नाम है भवानी, तो भवानी शिव जी की पत्नी भवानी। इस शब्द के बारे में चैतन्य महाप्रभु और केशव काश्मीरी के मध्य में जो चर्चा है, तो इस शब्द को लेकर चैतन्य महाप्रभु ने एक गलती निकाला था, केशव काश्मीरी का, वो बोला था भवानी भृत्य, शिव जी की पत्नी के पति, तो ये गलत कहा जाएगा, शिव जी की पत्नी के पति, फिर क्या, ये शब्द ठीक नहीं बैठ, ये गलती निकाला था। तो भाव कहते हैं शिव जी को, तो साक्षात भगवान शिव भी और पद्मज, पद्मज मतलब ब्रह्मा जी, जिनका प्रागट्य कमल से हुआ है, वे भी और आदि भी, आदि भी लगा रहे हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी और आदि भी, और उनके अलावा अन्य भी, अन्य भी अर्थात ये इस बात को ही महाराज नारद जी प्राचीन भरी के जब उनके साथ चर्चा हुई थी तो आदि भी के बारे में वो कौन कौन नहीं जानते उनका पूरा पूरा ब्यौरा दिया था कि हे महाराज प्राचीन भरी, भगवान को वास्तव में पूरा पूरा कोई नहीं जानता या पूरा पूरा उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। तो आदि भी के विषय में कहते हैं प्रजापतिम पति ब्रह्मा जी और साक्षात भगवान गिरीशो, भगवान शिव जी भी, और मनु, मनु महाराज, दक्षादय, दक्ष आदि भी, और प्रजा अध्यक्षा, प्रजा अध्यक्षा प्रजा के अध्यक्ष या राजा लोग भी, नैष्ठिका सनक आदय, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, जो अखंड ब्रह्मचार्य व्रत का पालन लिए हुए हैं, वे सनक आदि भी, सनक भी, मरीचि, अत्रि, अंगिरसो, पुलस्य, पुल, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ इत्यते मद अंता, और अंत में मैं तक भी भगवान को पूरा पूरा नहीं जान पाते और पूरा पूरा वर्णन नहीं कर पाते। हालांकि हम लोग कौन है, ब्रह्मवादी, हालांकि हम लोग, हम सभी ब्राह्मण हैं और वेदा, वैदिक साहित्य के वक्ता हैं, ज्ञान है हमको, हम वक्ता भी हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन फिर भी ये सब मिलकर भी, हालांकि ये लोग तपस्या करते हैं, व्रत आदि पालन करते हैं, वेदा अध्ययन करते हैं, मौन भी रहते हैं, समाधि में ही रहते हैं, उनका ध्यान भी करते हैं, लेकिन फिर भी इनमें से भगवान को पूरा पूरा कोई नहीं जान पाता या भगवान का पूरा पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसके विषय में ऐसा कहा जाता है, विख्यात उदाहरण है कि सारी पृथ्वी को पीस कर उसका कागज बना दिया जाए, सारे वृक्षों को कलम बना दिया जाए और समुद्र का स्याही बना दिया जाए और फिर कोई भगवान के वर्णन करने लगे तो ये सब वस्तुएं शेष हो जाएगी लेकिन भगवान का एक गुण भी शेष नहीं हो पाएगा, ना तो कोई पूरा पूरा वर्णन कर सकता है, उनका वर्णन नहीं कर सकता। प्रश्न होता है कि क्यों नहीं कर सकता, इसके विषय में गजेंद्र जी कहते हैं क्यों नहीं कर सकता। तो गजेंद्र जी कहते हैं, वैसे बहुत विरुद्ध शब्द लेकर भगवान का उन्होंने स्तुति किया था, जैसे भगवान का स्तुति कर रहे थे तो भगवान को कहते नमो शांताय घोराय, दोनों विरुद्ध शब्द हैं, एक तरफ कहते नमो शांताय, आप शांत हैं, बिल्कुल शांत है, आपको कोई आकांक्षा नहीं है, और सामने कहते हैं घोराया, आप घोर भी हैं। इस प्रकार वाक्य करने के बाद फिर कहते हैं क्यों, मैं बोल रहा हूं क्यों वाणी से भगवान का पूरा पूरा वर्णन नहीं हो सकता, तो कहते हैं नमो गिराम, गिराम विदुराय, नमो गिराम, गिरा मतलब वाणी से, भगवान का पूरा पूरा वर्णन वाणी से क्यों नहीं कोई कर सकता, तो कहते विदुराय विशेष दूर आया, वो वाणी से बहुत दूर हैं, वो वाणी से पकड़ में आने वाले नहीं हैं, विदुराय विशेष दूर हैं, विशेष दूर का अर्थ कोई दूर होता है कि भाई ये यहां से कितना दूर है तो इतना किलोमीटर दूर है तो इतना किलोमीटर चल के पकड़ लेगा, नहीं ऐसा नहीं है, वो विदुराय वो विशेष बहुत दूर है, इससे परे हैं, वाणी से परे हैं भगवान, कोई वाणी के द्वारा उनको वर्णन नहीं कर सकता। तो वाणी के द्वारा वर्णन नहीं हो सकता है तो फिर क्या चुप हो जाए मौन रहकर, तो व्यक्ति मौन भी रह जाएगा, अगर भगवान को समझना है तो मौन भी रह जाएगा, चलो मौन धारण कर लो, अब वाणी के द्वारा तो वर्णन हो नहीं सकता, अब मौन कर लो, तो अगर मौन भी हो जाएगा कोई भगवान को जानने के लिए, मन से चिंतन करेगा, जो कहते हैं मन 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 बहुत मन के लिए बहुत, तो मन से अगर मौन हो जाए तो मन तो चालू रहेगा कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प करे, तो कहते हैं कि मन च मन से भी वे परे हैं। अगर आप मौन हो जाएंगे और मौन होकर मन से उनका चिंतन करने लगेंगे, और लोग जान दे कि मन से चिंतन करने पर हम उनको पूरा पूरा जान लेंगे या वर्ण नहीं, मन से भी वे दूर हैं। तो चित से, चितो अपि, चित से भी दूर हैं, मन से, वाणी से, चित से, ज्ञान से वे दूर हैं। जो हमारे पास ज्ञान है उससे दूर है, कोई ज्ञान से भी नहीं समझ सकता। तो प्रश्न होता है कि जब वाणी से नहीं उनका वर्णन हो सकता, मन से हम उसको समझ नहीं सकते और चित से भी नहीं समझते, ज्ञान के द्वारा भी हम उनको नहीं समझ सकते, तो फिर इन सब पोथियों को बंद कर दिया जाए। फिर ये सब भगवान के विषय में अनेकों करोड़ों वर्ष से लोग बोलते आ रहे हैं, अनेक शास्त्र रचना हुई है, सब तो भगवान का वाक्य कर रहे हैं, फिर भी उनका एक गुण को भी हम पूरा पूरा नहीं बोल सकते, नहीं समझ सकते, तो फिर ये सब क्यों भक्त लोग इस प्रकार वर्णन करते रहते हैं? जब वो समझ में नहीं आते हैं, जब उनका वर्णन पूरा हो नहीं सकता है, तो फिर इतना साल से क्यों लगे हुए हैं, क्यों कर रहे हैं? और क्यों भक्तों को कहा जाता है कि बाबा भगवान का गुणावली करो, गुणावली करो, फिर जब हो ही नहीं सकता और पूरा नहीं होगा, तो इतना साल से पूरा नहीं हुआ, अब भी पूरा नहीं होगा, तो क्यों ये किया जाए? तो गुणावली नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? वास्तव में भगवान का पूरा पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन भक्त लोग फिर भी उनका वर्णन करते हैं, उनका गुणावली करते हैं। जैसे कोई पिता है और पिता के पॉकेट में पोता या लड़का पॉकेट में 200-300 रुपया देखे, और पिता कैसा है, रिलायंस कंपनी का मालिक है, और उनके जेब में उसका छोटा लड़का पॉकेट देख लिया और पॉकेट में देख लिया, अरे इतना सारा पैसा, बाप रे बाप, मेरे पिताजी बहुत धनी है, कितना 300-400 रुपया पॉकेट में, कितने धनी है मेरे पिताजी। और पिताजी से कहे कि आप बहुत पैसे वाले हैं, 300 रुपया पॉकेट में, तो ये कोई पूरा वर्णन तो उसका धन का हुआ नहीं, वो कितना पैसे वाला है, कितना बड़ा है, ये तो कोई वर्णन वो लड़का नहीं कर पाया। लेकिन अगर वो ऐसा कहता है कि ओहो आप बहुत धनी, तो पिताजी प्रसन्न होते हैं, हमारा पुत्र भी हमको समझ रहा है, हालांकि समझ तो बहुत कम समझा, लेकिन समझ रहा हो बहुत हमारा लोग। तो इस प्रकार भक्त लोग भगवान का गुणावली करते हैं, एक अंश मात्र गुणावली करते हैं, बहुत कम करते हैं, पूरा पूरा नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी भगवान का गुणावली करना यही भक्ति है, इसको भक्ति कहते हैं। और भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब प्रसन्न होते हैं, उनका अनुग्रह होता है, तब वो भगवान को समझता है, और भगवान को समझता है तो फिर गुणावली करता है, भले पूरा पूरा नहीं। इसी बात को नारद जी ने भी कहा है कि अथापि ते देव पदा अंबुज उद्वय प्रसाद लेशा अनुग्रहित एव ही, लेशा अनुग्रहित एव ही, थोड़ा सा उनका कृपा हो जाता है तब कोई कोई भक्त उनका गुणावली करता है। और कृपा कैसे होता है, भक्त्या, भक्ति से ही, एकमात्र भक्ति के द्वारा। बाकी जो लोग ध्यान करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं, उनके द्वारा वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं, ठीक ठीक नहीं समझ पाते हैं। भक्त्या माम अभी जाना थी, भक्ति के द्वारा ही मैं जाना जाता हूं। तो ये भक्ति क्या है, यही भक्ति है, भगवान का गुणावली करना यह भक्ति है। लेकिन ये गुणावली भी किसी श्रेष्ठ भक्त के आदेश निर्देशन में, इस प्रकार जब भक्त लोग भगवान का गुणावली करते हैं, शास्त्र के अनुसार लेकर गुणावली करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा गुणावली करते हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और ये भक्ति कहा जाता है। इसलिए भक्त लोग उनका गुणावली करते हैं, अर्थात भक्ति करते हैं, और इसके द्वारा ही वे थोड़ा थोड़ा करते हैं। अब नारद जी जो उपसंहार में उन भगवान से प्रार्थना कि पूरा पूरा तो उनका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन भगवान का आराधना, जिनको मौन के द्वारा और त्याग के द्वारा, व्रत के द्वारा, जिन भगवान की लोग उपासना करते हैं या जानना चाहते हैं, कई लोग कई कई विविध प्रकार के साधन करते हैं। क्यों साधन करते हैं? उनको ही उपलक्षित करके साधन करते हैं। भले साधन भिन्न भिन्न प्रकार के करें, भिन्न भिन्न पंथ हैं वो है। लेकिन सबका लक्ष्य तो वही है, वे प्रभु हमारे पर प्रसन्न हो, हमारे पर कृपा करें। इस प्रकार याचना करते हुए नारद जी इसका उपसंहार करते हैं और आगे बताते हैं कि शिव जी का भी उन्होंने किस प्रकार हेल्प किया था। उनके नाम के यश में जब बट्टा लग रहा था तो किस प्रकार उनके यश को भी भगवान ने बनाए रखा, वे कितने महान हैं। तो इस प्रकार संक्षिप्त में मैंने थोड़ा सा वर्णन किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। किसी का कोई प्रश्न अगर है तो, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि प्रश्न है तो आप बैठे हैं इसलिए मैं प्रश्न ले रहा हूँ, आप ही प्रश्न। उनका वर्णन नहीं कर सकते। उनके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। नहीं, इसमें अनुवाद में तो ये लिखा है कि उनका ध्यान करते हैं रूप, जो रूप मतलब जो साकारवादी हैं वे उनको पूजा करते हैं, कोई मौन के द्वारा जो निराकारवादी है तो वो मौन के द्वारा उनका ध्यान करते हैं, अनुवाद ऐसा किया गया। हाँ हाँ ये रूपम, इसका कई 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 स्थानों पर रूपम अरूपम भी कहा गया है। ये तो भले रूपम रूपम शब्द है लेकिन कई स्थानों में सुखदेव गोस्वामी भी स्वयं कहते हैं रूपम अरूपम, उनका कोई रूप नहीं है। तो इससे तो ज्यादा उनको उसमें बेनिफिट मिल जाएगा कि अरूपम कहा गया है। तो रूपम का ध्यान करने मतलब भगवान का रूप का अगर कोई व्यक्ति ध्यान भी करे तो भी वो उनके उसका वर्णन यहां तक कहा गया है। जैसे नारद जी कहते हैं कि ये लोग सब नहीं समझ पाते हैं, जैसा महाराज प्राचीन बरी के बार था, और कहते हैं कि हम उनको साक्षात देखते हैं, उनके साथ रहते हैं, पश्यन्ति अपि न पश्यन्ति, हम देखते हैं फिर भी उनको देख नहीं पाते हैं। तो इसी बात को अगर रूपम रूप का कोई ध्यान भी करे तो उनका वर्णन नहीं कर सकता अपनी बुद्धि से। रूपम उनके रूप का ध्यान करे या उनके रूप का वर्णन कोई पूरा पूरा नहीं कर पा सकता। इसको अगर निराकारवादी, निराकारवादी तो हर श्लोक में उनका बात निकालते हैं, ऐसा नहीं इसी श्लोक से निकालते हैं। ये हाँ हाँ बट ठीक है, जो शुद्ध सत्व में रहते हैं शुद्ध, मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा है प्रभु जी। सात्वताम पति तो ठीक है, भक्तों के पति हैं। योगी और ज्ञानियों के प्रति हैं ये। हाँ तो नारद जी, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने भी लिखा कि नारद जी, प्रभुपाद जी का तात्पर्य है कि नारद जी इस प्रकार भक्त और ये लोग जो हैं दूसरे ज्ञानी या योगी उनमें अंतर करते हुए अंत में यही कहते हैं कि वे सात्वताम पति हमारे पर प्रसन्न हो। इनको नेगलेक्ट किया, प्रभुपाद जी का तात्पर्य यह है। स्थापित करते हैं कि वे भक्त, जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कि वे भगवान जो गोपियों के साथ रहते हैं, यशोदा माँ के साथ रहते हैं, वे सात्वतम पति हमारे पर प्रसन्न हो। तो जिन जो मौन के द्वारा या ज्ञान के द्वारा जो परमात्मा का ध्यान करते हैं, या योगी जो परमात्मा का ध्यान, उनको उनका कृपा नहीं चाहते हैं वे, मैं उनका कृपा चाहता हूँ जो सात्वतम पति। तो प्रभुपाद जी ने इसको क्लियर किया कि नारद जी उन भगवान, मतलब भक्तों के ऊपर जो भगवान, भक्तों के द्वारा जो आराधित भगवान है, उनका कृपा चाहता हूँ, ना कि योगी द्वारा या किसी ज्ञानी द्वारा आराधित है। ये प्रभुपाद जी ने लिखा तात्पर्य में। यद्यपि भिन्न भिन्न लोग परम सत्य की खोज विभिन्न विधियों से करते हैं, फिर भी वे अचिंत्य बने रहते हैं, किंतु पांडवों, गोपियों, गोपों, नंद महाराज, वृंदावन वासियों के भगवत प्राप्ति की परंपरागत विधियों का अभ्यास, उनको यह अभ्यास नहीं करना पड़ता, क्यों भगवान इनके साथ रहते हैं। इसलिए नारद जैसा साधु पुरुष आध्यात्मिकवादी एवं शुद्ध भक्तों में अंतर को जानते हुए भगवान से प्रार्थना करता है कि वे भगवान हमारे पर प्रसन्न। वास्तव में आपने जो पूछा, मेरे बात समझ में नहीं आया कि कमलोचन प्रभु थोड़ा इस पर लाल गोविंद प्रभु
हाँ गुड़ाकेश प्रभु ये कहना चाहते हैं, नयस्य साक्षात भव पद्म जादि भी रूपम धिया वस्तु तयोपवर्णितम। केवल दो लाइन यदि कोई पढ़ेगा तो निराकारवादी इस पर कह सकते हैं भगवान का रूप नहीं है, क्योंकि साक्षात शिव जी और ब्रह्मा जी भी उनके रूप को समझ नहीं पाते हैं। परंतु इसके उत्तर पक्ष में जो सात्वतम पति शब्द है, इसे यह साबित होता है कि भगवान का रूप है। और मैं अभी एक टीका में एक आचार्य गण बहुत सुंदर कहते हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं मौनेन, भक्तिया और उपशमेन। वहाँ पर भक्ति का अर्थ है भगवान की कथा श्रवण करना। तो इससे भी यह साबित होता है कि भगवान का बहुत सुंदर रूप है जिसका हम श्रवण कर सकते हैं। तो ये भक्तिया और सात्वतम पति से यह क्लियर होता है कि भगवान का बहुत सुंदर रूप है और उनका अनुभव श्रवण किया जा सकता है। परंतु मेरा एक प्रश्न है कि भगवान का वर्णन न तो ब्रह्मा और न तो शिव कर सकते हैं, परंतु प्रसादता मेष भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है मौन से, भक्ति से और उपशमेन। तो मौन रहकर कैसे भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है?
तो मौन का अर्थ यही करते हैं कि भगवत चर्चा को छोड़कर दूसरी बातों को न बोलना, ये मौन है। जहां भक्तों के लिए मौन का प्रश्न है, मौन हो जाना मतलब चुप हो जाना नहीं। प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि मौन हो जाना मतलब चुप हो जाना नहीं, भगवान की मात्र व्याख्या करना, गुणावली करना, ये एक भी मौन है। भौतिक विषयों को छोड़कर, भौतिक विषयों के बीच में मौन हो जाना, न बोलना और भगवान की ही गुणावली करना, भक्तों के लिए यही मौन है।